बहुत बहुत धन्यवाद बिशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम साई राम। यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक हमारे आज के हिंदी प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में आप श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ के अगले भाग के अतिरिक्त श्री राजीव कर्महे जी से श्री एन कस्तूरी जी द्वारा लिखित पुस्तक लव इन एक्शन के एक अध्याय का पाठ सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत में दो भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा साई कुलवंत हॉल में 17 मार्च सन 2010 से प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ के अगले भाग की प्रस्तुति से।
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं परतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रथाश्रुतं श्रीकृष्णं निखलेश्वरं वंदे श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूत गणादिसेवितं अपीथजम्भु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर हरिपादुरुपंकजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं श्रीकारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये सौवर्णासन संस्थिताम विनयनाम पीतांशुकुल्लासनिम हेमाभाम वरुचिम शशांकमुकटाम सच्चम पगस्रगयुताम हस्तिरमुरगर पाशबद्धरसनाम सम्रिवतिम भूषणे व्याप्तांगिम बगलामुखिम त्रिजगताम स्तंभनिम चिन्तये लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम जननी जनक ऋतुराज के प्रभु श्री साई राम श्री सत्य साई भगवान। बोलिए भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान और रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान, भक्तों में भाव के रूप में विद्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक युगावतार प्रेमावतार पूर्णावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए भगवान बाबा की विशेष कृपा, वैकुंठ में हम सब भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन करें, सब गाएं और भाव से गाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
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 श्रीमन नारायण नारायण
भगवन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
शिरडी नारायण परति नारायण
शिरडी नारायण परति नारायण
शिरडी नारायण परति नारायण
शिरडी नारायण परति नारायण
साईं नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
मंगल भवन अमंगल हारी
मंगल भवन अमंगल हारी
उमा
सहित जेहि जपत पुरारी
उमा सहित जेहि जपत पुरारी
भज नारायण 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 भज
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
सरयू के तीर अयोध्या नगरी
सरयू के तीर अयोध्या नगरी
अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी
अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी
श्री राम चंद्र अवतारा नेनु
श्री राम चंद्र अवतारा
राजा राम चंद्र अवतारायण
राजा राम चंद्र अवतारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण
नारायण
यमुना के तीर पे मथुरा नगरी
यमुना के तीर पे
मथुरा नगरी मथुरा नगरी
मथुरा नगरी मथुरा
श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण
श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण
नारायण
चित्रा के तीर पे पर्वती नगरी
चित्रा के तीर पे पर्वती नगरी
पर्वती नगरी
पर्वती नगरी
श्री साईनाथ अवतारायण
श्री साईनाथ अवतारायण
सत्य साईनाथ अवतारायण
सत्य साईनाथ अवतारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
भगवन नारायण नारायण नारायण
भगवन नारायण नारायण नारायण
साई नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण
नारायण
एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहां हैं। भगवान आपका निवास कहां है? आप योगियों के भीतर रहते हैं, ज्ञानियों के भीतर रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, आप रहते कहां हैं? तो भगवान ने कहा नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मदवक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवर्षि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे। नारद, ना तो मेरा निवास वैकुंठ में है, योगी नाम हृदय नच, योगियों के भीतर भी मेरा निवास नहीं है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। देवर्षि नारद मंत्रविद हैं, योगविद हैं, शास्त्रविद हैं, शब्दविद हैं, लेकिन अभी भक्तिविद नहीं बने हैं। भगवान उन्हें भक्ति का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, योगियों के भीतर भी मेरा निवास नहीं है, लेकिन देवर्षि नारद, मदवक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन जहां मेरे भक्त आनंदित होकर, मेरे भक्त भाव में डूबकर, मेरे भक्त आंतरिक आध्यात्मिक रस में डूबकर मेरा संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं उन भक्तों के भीतर निवास करता हूं। मेरी बांसुरी उन्हीं भक्तों के भीतर बसती है, इसलिए हरि भजन बिना सुख शांति कहां, हरि नाम बिना आनंद कहां। और भागवतम में भी नामस्मरण का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भागवत कहती है, क्रते यद्यातो विष्णु वेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचार्यां कलौ तद हरि कीर्तनान। भगवान तो इस कलिकाल में संकीर्तन और नामस्मरण से प्राप्त होते हैं, और नवदा भक्ति में भी तो यही कहा, प्रथम भगति संग तनि करि संगा, प्रथम भगति संग तनि करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संग तन कर संगा, प्रथम भगति संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
और दूसरी भक्ति है भगवान की लीलाओं को सुनना।
तीसरी भक्ति गुरु पर, चौथी भक्ति अमान।
चौथी भक्ति है अमान हो जाना, मान और अपमान से मुक्त हो जाना। भक्त कौन है जो न प्रशंसा की भाषा समझता है न आलोचना की भाषा समझता है, जिसे ना तो प्रशंसा की भाषा समझ में आती है न आलोचना की भाषा समझ में आती है, वही संत है। और जब भगवान का भगवान से जब मिलन होता है, भगवान जब मिलते हैं तो अपने ही ढंग से मिलते हैं, और जिसको जो देना होता है वो अपनी ही विधि से देते हैं। देवर्षि नारद तो भगवान के कितने भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन उन नारद जी के मन में इच्छा जाग गई। एक बार जीत लिया कामदेव को, समाधि में जाकर बैठे, नेत्र बंद थे तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं ये नारद जी मेरा राज्य तो प्राप्त करना नहीं चाहते। हमेशा इंद्र को चिंता रहती है, कुर्सी की चिंता बहुत होती है, कुर्सी कोई छोड़ता ही नहीं जब तक उसे कुर्सी न छोड़ दे, घर कोई छोड़ता ही नहीं जब तक कोई उसे घर न छोड़ दे, चाबी कोई मां छोड़ती नहीं जब तक चाबी उसे न छोड़ दे। छोड़ना कौन चाहता है, सब छूटता है, हम छोड़ते नहीं है। तो नारद जी के मन में एक बार यह भाव आ गया कि मैंने विजय प्राप्त की है। देखिए भगवान की कृपा और भक्त को भगवान की परीक्षा। देवर्षि नारद के मन में जैसे ही यह भाव आया कि मैं जीता हूं, रतिपति को मैंने हराया है, तो शिवलोक गए, शिवजी से मिले, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से मिले, और वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, मैंने साक्षात कामदेव को युद्ध में पराजित कर दिया, मैं समाधि में बैठा हुआ था, कामराज मेरी समाधि में विघ्न के लिए आया, लेकिन हे नारायण देखो मेरे नेत्र नहीं खुले। भगवान समझ गए कि नारद को गंभीर रोग हो गया है, इसलिए सत संगति मुद मंगल मूला, सत संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन कूला, सोई फल सीधि सब साधन पूला, अहम त्याग करो कराई गुसाई, अहम त्याग करो कराई गुसाई, भजहुं नाथ तुम प्रभु पद माही, भजहुं नाथ प्रभु पद माही। कहा नारद को अहंकार हो गया है, और अहंकार को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। नारद का अहंकार दूर कैसे होगा? दो प्रकार के चिकित्सक होते हैं, एक वे जो दवाई से स्वस्थ करते हैं और दूसरे वे जो ऑपरेशन से स्वस्थ करते हैं, और तीसरे वे होते हैं जो कहीं भी रहते हैं ना, जो प्रामाणिक डॉक्टर नहीं होते, गांव में ऐसे डॉक्टर पाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया, तो एक डॉक्टर तो हमारे गांव में ऐसे हैं कि वो ये पूछते हैं कि कितने का इलाज कर दूं, तो मरीज पूछता है कि कितने की बीमारी है। भगवान ने विचार किया कि नारद की गहन चिकित्सा की आवश्यकता है, नारद को गंभीर रोग हो गया है, और देवर्षि नारद के इस गंभीर रोग के निवारण के लिए भगवान नारायण ने एक दिव्य लीला की। वह दिव्य लीला कौन सी है?
बस ही बसाए बहु सुंदर नगरा, देख ही चकित भये मुनि वृंदा।
जब नारद भगवान के दर्शन कर जाने लगे तो भगवान ने एक लीला की। भगवान बाबा हम सबके साथ लीलाएं कर रहे हैं और भगवान की चिकित्सा बड़ी विचित्र है। डॉक्टर की चिकित्सा तो समझ में आ जाती है लेकिन भगवान की चिकित्सा समझ में नहीं आती। भगवान जब आपके अहंकार का ऑपरेशन करते हैं, आपकी वासना का ऑपरेशन करते हैं, आपके मैं का ऑपरेशन करते हैं तो उनके हाथ भी अज्ञात होते हैं और हाथों में जो औजार हैं वो भी अज्ञात होते हैं। अज्ञात चिकित्सा, हम जान ही नहीं पाते और हमारी चिकित्सा हो जाती है। तो देवर्षि नारद ने एक सुंदर नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर, ओहो हो, पूछिए मत उस नगर की कितनी शोभा है। ऐसा सुंदर नगर जो स्वर्ण से बना हुआ है, स्वर्ण से सजा हुआ है, उस नगर में शहनाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं और माताएं मंगल गान गा रही हैं। नारद जी ने विचार किया यहां हो क्या रहा है। लोगों से पूछा तो कहा इस नगर की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। महाराज आप संत हैं, आप जाइए राजकुमारी को आशीर्वाद देकर आइए।
यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे करो जना, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते।
जो लोग समाज का नेतृत्व तो करते हैं, जो लोग समाज के मार्गदर्शक हैं, जो लोग समाज को मार्ग दिखा रहे हैं, सबसे पहले भगवान उनकी चिकित्सा करते हैं। यदि समाज के मार्गदर्शक भ्रमित हो जाएंगे, यदि समाज का नेतृत्व करने वाले लोग भ्रमित हो जाएंगे तो पीछे के लोग भी मार्ग भटक जाएंगे। आपने देखा है कभी भेड़ देखी? भेड़ का जो झुंड होता है ना, राजस्थान में भेड़े बहुत पाई जाती हैं। तो होता क्या है, जो भेड़ चराने वाला रहता है वो 10,000 भेड़े, 5,000 भेड़े, और भेड़ों में एक गुण होता है कि एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलती है। अब 10,000 भेड़ों को एक आदमी चराता है कैसे, पता है आपको? वो सबसे आगे वाली भेड़ को चराता है, पीछे वाली को नहीं चराता। सबसे आगे वाली भेड़ को चराता है, उसे रास्ता बताता है और उसके पीछे पीछे सारी भेड़े चढ़ती है। वह क्या करता है, जो भेड़ का चरवाह रहता है, आगे वाली जो भेड़ है सिर्फ उसे मार्ग दिखाता है और उसके पीछे सारी भेड़े चलती हैं। इसी प्रकार भगवान सबसे पहले चिकित्सा करते हैं समाज के मार्गदर्शकों की, समाज के नेतृत्वकर्ताओं की, समाज के सजग प्रहरियों की, जिनको भगवान ने समाज का नियंत्रण जिनके हाथ में दिया है। यदि ऐसे लोग ठीक मार्ग पर चलेंगे, यदि ऐसे लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, समाज में श्रेष्ठ लोगों का, समाज में आगे वाले लोगों का जैसा आचरण होगा, भगवान कहते हैं पीछे वाले लोगों का भी आचरण वैसा ही रहेगा। अब माँ कहती है मेरा बेटा मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरी बहू मेरा सम्मान नहीं करती, लेकिन जब वो खुद बहू थी तो उसने अपनी सास का कितना सम्मान किया। पिता कहता है मेरा पुत्र मेरा सम्मान नहीं करता, लेकिन उस पिता ने अपने पिता का सम्मान जितना किया होगा बच्चे देख रहे हैं ना, आप जितना अपने पिताजी को सम्मान देंगे आपके बच्चे भी उतना ही आपको सम्मान देंगे, और यदि आप ही अपने माता पिता का अपमान करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे। ये धार्मिक सत्य भी है और मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। तो भगवान ने विचार किया कि नारद की चिकित्सा अत्यंत अनिवार्य है, और नारद की चिकित्सा कैसे की जाए।
मते बकुम्बदलने भुविशन्ति सूरा, मते बकुम्बदलने भुविशन्ति सूरा, केचिद प्रचंड मृगराज वधेपि दक्ष, कंदल्प दल्प दलने विरला मनुष्य।
शास्त्र कहता है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हाथी को जीत सकते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी दोनों भुजाओं से सिंह के मुंह को भी फाड़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसने अपनी दसों इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त की हो।
साई राम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आप श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा स्वामी के समक्ष साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ का अगला भाग सुन रहे थे। यह कथा प्रवचन उन्होंने 17 मार्च सन 2010 से दिया था। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राजीव करमहे जी द्वारा पुस्तक लव इन एक्शन के एक अध्याय का पाठ। लेखक हैं श्री एन कस्तूरी।
ओम श्री साई राम। प्रशांति निलयम का स्थायी निवासी कौन है? कुछ दिन पहले स्वामी ने प्रशांति निलयम में स्थायी रूप से रहने वाले निवासियों को बुलाया था। स्वामी उन्हें साधना करने के ढंग समझाने के लिए पहले भी बुलाया करते थे, परंतु पिछले 3 वर्षों से उन्होंने बुलाना छोड़ दिया था। स्वामी का कहना था कि इन लोगों को पहले जो खिलाया था उन्होंने उसे अभी तक हजम नहीं किया है। ऐसे लोगों को और खिलाएंगे तो वे बीमार पड़ जाएंगे। जो बताया जाता है उसे समझना चाहिए, समझने के बाद उसे आचरण में लाना चाहिए, इसके बाद ही उन्हें शिक्षा की अगली खुराक मिलनी चाहिए। इस अवसर पर स्वामी ने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा। मैंने कहा, स्वामी जो भी नाम रखते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। स्वामी ने इस स्थान का नाम प्रशांति निलयम रखा है। यह कोई ऐसा आश्रम नहीं है जहां ऋषि मुनि रहते हैं और उपदेश देते हैं। भारत में रामकृष्ण आश्रम और ऐसे दूसरे आश्रम हैं। यह स्थान मंदिर भी नहीं है, क्योंकि यहां किसी विशेष देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहां संसार के सभी धर्मों को और ईश्वर के सभी नामों और रूपों को माना जाता है। जब यह भवन बनकर तैयार हुआ तो स्वामी ने इसे प्रशांति निलयम का नाम दिया। निलयम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कुछ स्थापित किया गया हो। प्रशांति का अर्थ है सबसे ऊंची शांति, शांति का सर्वोच्च स्तर, ऐसी शांति जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यह वह स्थान है जहां आपको प्रशांति मिलती है। उपनिषदों में कहा गया है, प्रशांति मदि गच्छति। मनुष्य इस स्थिति में तब पहुंचता है जब उसके जीवन में द्वैत नहीं रहता, जब केवल एक और केवल एक ही रह जाता है, तब वह प्रशांति अथवा सर्वोच्च शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। यह हाईएस्ट लर्निंग का संस्थान है, पराज्ञान का संस्थान है। संसार के प्रत्येक स्कूल या कॉलेज में केवल शिक्षा दी जाती है, परंतु यहां पर सर्वोच्च शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा जिसका संबंध केवल मन, इंद्रियों और बुद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा तक है, जहां आपको भगवान का स्पर्शन और संभाषण प्राप्त होता है, उनकी मनमोहक मुस्कान का आनंद और उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है। ये सब आपको प्रशांति प्राप्त करने में सहायता देते हैं। देखा जाए तो यहां कोई स्थायी निवासी नहीं है, सब अस्थायी हैं। इसीलिए तो हम मृत्यु और मां अमृतम गमय की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मृत्यु से अमृत्व की ओर ले चलें। विदेशी शब्द का भी यहां कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि स्वामी का हृदय इतना विशाल है जिसमें सब एक साथ रहते हैं। उनके हृदय से कोई बाहर नहीं है, सभी उनके यंत्र हैं। आप उनके संदेशों और आदर्शों से अनजान तो हो सकते हैं, परंतु वे आपसे अनजान नहीं हैं। आप सब उनके हृदय में रहते हैं। हम अपने आप को यहां के स्थायी निवासी केवल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें यहां रहने के लिए एक कमरा मिला हुआ है जहां से हमें निकाला नहीं जाएगा। इस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईएस्ट लर्निंग में दाखिला लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा, एक काल्पनिक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। यहां पर स्थायी रूप से रहने वाले हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हमने यह परीक्षा पास कर ली है। हमने यहां प्रवेश तो पा लिया है, परंतु यहां के नियमों और अधिनियमों को अभी पढ़ा नहीं है। हमारी परीक्षा होनी अभी बाकी है। स्वामी हमें प्रशांति देना चाहते हैं, परंतु हम प्रशांति प्राप्त करने के योग्य हैं अथवा नहीं, यह परीक्षा देनी अभी बाकी है। स्वामी कहते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए हम में चार योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। मैत्री अर्थात सबसे मित्रता होना, आपस में किसी प्रकार की शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, होड़ या शोषण का न होना। मित्रता में समानता की भावना होती है, ऊंच नीच की नहीं। मित्र मित्रों की तुलना और मूल्यांकन नहीं करते, एक दूसरे पर हावी नहीं होते, एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, शोषण नहीं करते। मित्र आपस में मिलकर रहते हैं। किसी ने सच कहा है, रिश्तेदारियां तो भगवान बनाते हैं, परंतु उनकी कृपा है कि मित्रों का चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। मित्रता में सब बराबर होते हैं, क्योंकि उन सबको प्रेरणा देने वाला ईश्वर भी एक ही होता है। एक ही ईश्वर की शक्ति उन सब में कार्य करती है। इसलिए सबसे पहली योग्यता है कि सारे विश्व से मित्रता हो। इसलिए आइए हम सब देखें कि यह योग्यता हमें है भी या नहीं। क्या हम में यह भावना है कि एक ही परम पिता की संतान होने के नाते हम सभी सगे भाई बहन हैं? क्या हम में हार्दिक प्रेम से सबका स्वागत करने की भावना है? हम सबको अपना भाई तो कहते हैं, परंतु क्या हम स्वामी द्वारा बताई गई भाईचारे की भावना को अमल में लाते हैं अथवा नहीं? परिवार में भाई भाई से लड़ता है। हमारा बड़ा भाई हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। हम प्रायः कहते हैं कि मां का सारा प्रेम तो बड़ा भाई ले जाता है, उसे मुझसे अधिक खाने को मिलता है। इस तरह हमने देखा कि ईर्ष्या, घृणा, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा इत्यादि सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू होती है। माता पिता भी इन्हें प्रोत्साहन देते हैं। वे कहते हैं, वह देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, पढ़ाई में कितना अच्छा है, और तुम कितने निकम्मे हो। हम एक को दूसरे के विरुद्ध भड़काते हैं। ऐसा भाईचारा किस काम का? असली भाईचारा ऊंची किस्म का भाईचारा है, जिसमें हम सब यह मानते हैं कि हम सबको एक ही भगवान से प्रेम मिलता है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। यह है असली भाईचारा, यह है असली मित्रता। दूसरी योग्यता है करुणा अर्थात दया। करुणा का अर्थ किसी पर तरस खाना नहीं है। तरस खाने की भावना में हम स्वयं को दूसरों से बेहतर समझते हैं। प्रकृति की किसी सुंदर वस्तु को देखकर रामकृष्ण परमहंस समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे। काले बादलों से घिरे आकाश में सफेद सारस पक्षियों को उड़ते देखकर वे जब समाधि की उच्च स्थिति में पहुंच जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वे स्वयं से कहने लगते, जीव दया, जीव दया। फिर वे अचानक चारों ओर देखने लगते और कहते, नहीं नहीं, दया नहीं, दया नहीं, सब जीवों को भगवान समझकर उनकी सेवा करो। एक दिन विवेकानंद और उनके भक्तगण उनको ध्यान से देख रहे थे। विवेकानंद ने पास बैठे भिक्षु को झकझोरते हुए कहा, मुझे अब पता चला है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने समस्त जीवों की सेवा करने के लक्ष्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ है शेयर एंड केयर, अर्थात दूसरों के दुख में शामिल होना और उनकी देखभाल करना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? लाउड स्पीकर लेकर भीड़ इकट्ठी करेंगे और कहेंगे, देखो यह बेचारा कुएं में गिर गया है, यह फला गांव के फला मोहल्ले में रहता है, इसकी एक पत्नी और तीन बच्चे हैं। इस तरह आप एक जनसभा करके उसे बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए अखबार में अपनी फोटो छपवाते हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने इसकी जीवन रक्षा की है। ऐसा करना सेवा नहीं है। यह समय तो उस डूबते व्यक्ति को उस संकट से निकालकर उसकी जान बचाने के लिए कुछ करने का है, उसके दुख में शामिल होकर उनकी देख रेख करने का है। स्वामी कहते हैं, तुम्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी हो सके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, चाहे शारीरिक हो अथवा वित्तीय, जैसी भी सहायता कर सको करो। सहायता की पुकार आने के बाद अपने साधनों का प्रयोग न करना पाप है। ऐसे अवसर पर अपनी बुद्धि, अपने कौशल या अपने साधनों का प्रयोग न करना ईश्वर का अपमान करने के समान है। संभव है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों के कारण कुएं में गिर गया हो, परंतु तुम्हारे लिए अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों द्वारा मिटाने का यह एक अच्छा अवसर है। यह अवसर हाथ से जाने मत दो, कूद पड़ो और बचा लाओ उस डूबते व्यक्ति को, तुम्हारे जीवन में आने वाला ऐसा प्रत्येक संकट, प्रत्येक दुर्घटना तुम्हें एक नेक कर्म करने का अवसर देती है। ऐसे मौके का लाभ उठाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो अवश्य ही तुमने एक बुरा कर्म कर लिया जिसका फल तुम्हें समय आने पर भोगना पड़ेगा। यदि तुम्हें किसी की सेवा करने का, किसी का दुख बांटने का, किसी की सहायता करने का मौका मिलता है और समर्थ होते हुए भी तुम ये सब नहीं करते तो तुम एक पाप करते हो। कर्म अच्छा भी होता है और बुरा भी। बुरे कर्म करने का फल बुरा होता है, अच्छा कर्म करने से पुण्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण दुख भोग रहा है तो उसकी सहायता करके तुम एक नेक कर्म कर सकते हो। यह है करुणा, यह है दया। सेवा दल के स्वयं सेवकों से स्वामी कहते हैं, केवल बैज लगाकर ही तुम सेवा दल के स्वयं सेवक नहीं बन जाते। सौंपे गए कार्य को पूरा करने मात्र से तुम सेवा दल के स्वयं सेवक नहीं बन जाते। प्रत्येक सेवा दल स्वयं सेवक को सेवा करने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। तुम फुल टाइम सेवक हो, सेवा के लिए सदा समर्पित सेवक हो। तुम्हारे सारे साधन, तन, मन और धन का प्रयोग दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। यह है करुणा, तुम्हारी दूसरी परीक्षा जो तुम्हें पास करनी है। काफी कठिन परीक्षा है। स्वामी तुम्हें केवल यह कहने के लिए नहीं आए हैं कि मेरे पास आओ, तीन बार ओंकार करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। स्वामी ने तुम्हें बड़ा कठिन कार्य सौंपा है। स्वामी द्वारा दिया गया छोटे से छोटा काम भी बड़ा कठिन होता है। हमें स्वामी को प्रसन्न करना है। किसी के प्रति बैर, घृणा, ईर्ष्या या धौंस जमाकर हम स्वामी को प्रसन्न नहीं कर सकते। उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है केवल करुणा के द्वारा, अभागे लोगों के दुख कम करके, उनकी देखभाल करके, उनकी सेवा और सहायता करने के किसी भी अवसर को हाथ से न गंवाकर हम स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक सेवा को भगवान की सेवा समझकर, उनकी पूजा समझकर करने से स्वामी प्रसन्न होते हैं। तीसरी परीक्षा है मुदित, अर्थात सदा प्रसन्न रहना। चाहे कितने भी दुख आए, कितनी भी निराशा आए, कुछ भी हो जाए, सदा प्रसन्न रहो। उदासी को अपने पास कभी मत फटकने दो। आपको अपने आप से कहना चाहिए कि भगवान की मुझ पर विशेष कृपा है, उसने किसी अन्य को दुख न देकर मुझे दिया है। यह भगवान का उपहार है, उसने इस दुख के लिए मुझे चुना है, क्योंकि वह जानता है कि मैं इसे सहन कर सकता हूं। मैं वास्तव में धन्य हो गया। कुछ भी हो जाए, सदा प्रसन्न रहो। निराशा हो अथवा वेदना, चाहे किसी प्रिय और सगे की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, फिर भी सदा प्रसन्न रहो, क्योंकि भगवान का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। इसीलिए तो स्वामी कहते हैं कि जब आनंद का भंडार, आनंद का स्रोत स्वयं मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान हूं, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए। आनंद के स्रोत को रोककर, उसका बहाव रोककर दुखी होना, अपने भीतर भगवान के साम्राज्य के विरुद्ध कार्य करना है। जब भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, तो फिर दुख का क्या काम। यह है तीसरी योग्यता, काफी मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत से लोग यहां से भाग जाते हैं, लेकिन स्वामी इस योग्यता पर बल देते हैं। इस संबंध में वे किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। आप प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमया। यदि आप वास्तव में मन की गहराई से यह महसूस करते हैं कि यह संसार असत्य है, यह संसार क्षयशील है, यह संसार मर रहा है, तो स्वामी आपको अपने पास बुलाकर कहेंगे, आओ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। चौथी योग्यता जो आप में होनी चाहिए वह है उपेक्षा। कोई मोह ना होना, अर्थात जिस तरह पानी की बूंद से कमल का पत्ता गीला नहीं होता, उसी तरह आप भी किसी वस्तु से प्रभावित ना हो। किसी भी सुख या दुख, सफलता या असफलता से प्रभावित ना हो, इसे कहते हैं उपेक्षा। यदि आप किसी वस्तु को चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको इस वस्तु से मोह है। जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां आपको कुछ नहीं चाहिए, अर्थात आपको किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है, तब आपको मिलती है प्रशांति। स्वामी कहते हैं कि प्रशांति निलयम के स्थायी निवासियों में ये चार योग्यताएं होनी चाहिए। स्वयं में इन चार योग्यताओं को ग्रहण करके कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपने लिए प्रशांति निलयम का निर्माण कर सकता है। स्वामी कहते हैं, यदि तुम अपने हृदय को प्रशांति निलयम बना लो, तो मैं वहीं आ जाऊंगा। बाबा कहते हैं कि वे स्वयं प्रशांति निलयम के स्थायी निवासी हैं, और उन्हें अपने हृदय में बसाने के लिए हमें अपने हृदय को प्रशांति निलयम बनाना होगा। स्वामी ने जो चार योग्यताएं बताई हैं, वही वास्तविक धर्म है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि यह कैसा धर्म है जिसमें ईश्वर का कोई नाम ही नहीं है। ईश्वर का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर के कई नाम हैं और उसका एक भी नाम नहीं है। अपने अंदर स्थित ईश्वर के साम्राज्य से प्रेरित होकर, अपने भीतर के साई से, अपने भीतर के जीसस से, अपने भीतर के शिव या अपने भीतर विद्यमान दिव्य शक्ति के किसी भी नाम से प्रेरित होकर, निरंतर समबुद्धि, निरंतर आनंद, निरंतर परम हर्ष की भावना, कण कण में भगवान की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करने का प्रयत्न करो। यदि आप ऐसा आचरण करें, इस भाव में स्थित हो जाएं, तो आप आनंद की उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिसे प्रशांति निलयम कहते हैं। परम ज्ञान के संस्थान में यदि आप इन चारों परीक्षाओं में पास हो जाएं, अर्थात मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा की परीक्षा में पास हो जाएं, तो स्वामी प्रेम से आपको गले लगा लेंगे और सदा सदा के लिए आपको अपने हृदय में बसा लेंगे।
साई राम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आप श्री एन कस्तूरी जी द्वारा लिखित पुस्तक लव इन एक्शन के एक अध्याय का पाठ सुन रहे थे। सूत्रधार थे श्री राजीव करमहे। अब आपके समक्ष प्रस्तुत हैं दो भजन। सर्वप्रथम प्रस्तुति श्री सुमित टप्पू जी द्वारा गाए गए एक भजन की होगी और आज के कार्यक्रम का समापन भगवान बाबा जी द्वारा गाए गए एक सुमधुर भजन से होगा।
जिसने सजाई खुशियां हमारी, जिसने बसाया जहां, सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साई मां। ओ जिसने सजाई खुशियां हमारी, जिसने बसाया जहां, सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साई मां। साई मां, साई मां, ओ मां, साई मां, ओ मां, साई मन मंदिर की मूरत तुम हो, मैं एक प्रेम पुजारी हो। मन मंदिर की मूरत तुम हो, मैं एक प्रेम पुजारी। माँ का आंचल माँ की ममता पाई तुमसे सारी हो। माँ का आंचल माँ की ममता पाई तुमसे सारी हो। बदले चाहे दुनिया सारी, बस बदलो तू ना। सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साई मां। साई मां, ओ मां, दिल धड़कन सा एक अटूट सा रिश्ता, माता पिता गुरु भगवान और तुम हो नेक फरिश्ता। हो मैं अबोध अज्ञानी बालक, करना भूल क्षमा। सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साई माँ, ओ माँ साई माँ, ओ माँ साई माँ, ओ माँ साई माँ, ओ माँ साई माँ। हो जिसने सजाई खुशियां हमारी, जिसने बसाया जहां, सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साई माँ, ओ माँ साई माँ, साई माँ साई माँ।
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नैकी नैकी रक्षति ढूक्तुं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नकि नकि रक्षति ढूक्तुं करणे नकि नकि रक्षति ढूक्तुं करणे भज गोविंदम
साई राम। यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा आज का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान बाबा जी की दिव्य एवं मधुर वाणी में गाया गया यह भजन भज गोविंदम हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी। हमारा अगला हिंदी कार्यक्रम मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और अगला सीधा प्रसारण गुरुवार की शाम इसी समय होगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। आपके सुझाव एवं टिप्पणियां हमारी उत्तरोत्तर प्रगति में बहुत सहायक होती हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें ईमेल द्वारा हमें भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सब से विदा लेता हूं। रेडियो साई के कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब बिशु भाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।